ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवत क्रम के अनुसार स्कंद चार अध्याय 28 श्लोक संख्या 42। परे ब्रह्मणि चात्मानम्, परे ब्रह्मणि परम ब्रह्म तथात्मने वीक्षमाणो विहाय क्षाम अस्माद् उपर रामः। परे ब्रह्मणि चात्मानम्, परब्रह्म तथात्मने वीक्षमाणो विहाय क्षाम अस्मादुपर रामः। परे परे दिव्य ब्रह्मणि ब्रह्म में च तथा आत्मानम् आत्मा को परम परम ब्रह्म ब्रह्म तथा भी आत्मने अपने में वीक्षमानः देखते हुए विहाय त्याग कर इक्षाम अंतर अस्मात् इस विधि से ऊपर राम संत हो गए। निश्चय ही अनुवाद तात्पर्य श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा इस प्रकार राजा मलयराज परमात्मा को अपने पास बैठे हुए और स्वयं आत्मारूप को परमात्मा के निकट बैठे हुए देख सकते थे। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। तात्पर्य भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान में भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है। साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में दिखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं दिखता। यह भौतिक जगत परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाते हैं। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्वं खलोदं ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी तथाकथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि चारों दिशाओं में इस प्रकार देखती है। अज्ञान दिविदंतस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्गयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुनदिनतारिणं जयतां सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनित्यनामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्ण। परब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तदात्मनि वीक्षमाणो विहाय क्षम अस्मात् उपर राम। हम लोग इस अध्याय में महाराज मलयध्वज की मुक्ति के विषय में श्रवण कर रहे हैं। आगे के कुछ पीछे के कुछ एक श्लोक जो है उनमें बताया गया कि किस प्रकार महाराज मलयध्वज अपने चित्त को समाहित करते हुए तपस्या पूर्वक ध्यान करने लगे और 36,000 साल तक ध्यान करने के बाद उनका स्थिति कैसा हो गया तो उनका वर्णन पिछले श्लोक में कल बताया गया। साक्षात भगवत उक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विशुद्ध मुखम। इस श्लोक में बताया गया कि साक्षात श्रीहरि एक महानतम व्यक्तित्व है। तो कहते हैं हेनरी हे राजन, उन्होंने उन भगवान ने मलयध्वज के हृदय में विशुद्ध ज्ञान का दीपक जला दिया, अर्थात उनके हृदय में अत्यंत विवेक उत्पन्न हुआ। और इन आत्यंतिक विवेक को प्राप्त होकर के महाराज किस प्रकार अपने आप को और शिव भगवान को देख रहे हैं, और उनको देखते हुए इस शरीर से वो किस प्रकार उपराम होकर के शांति को प्राप्त हो गए, अर्थात किस प्रकार वो इस संसार से मुक्त हुए, उनका वर्णन आज के श्लोक में है। देखिए श्रीमद् भागवतम की कथा शैली को बराबर समझ लेना चाहिए। कथा के दो पक्ष होते हैं, एक कथा पक्ष और एक तत्व पक्ष। और आचार्य लोग कभी कभी कथा पक्ष से अपने प्रवचन करते हैं या लिखते हैं अपनी टीकाएं, और कभी कभार उनमें से तत्व पक्ष को उठा करके वो कथा को देते हैं। लेकिन श्रीमदी भागवती कथा है किस लिए, हम सब बद्ध जीवात्माओं के समझ के लिए, उद्धार के लिए ये कथा है। चाहे कथा पक्ष हो अथवा तत्व पक्ष हो, जीव के लिए हमेशा कल्याणकारी है। लेकिन वो तभी कल्याणकारी हो सकता है जब उनको एज इट इज दिया जाए, बगैर खिंचातानी। जब भागवतम के ऊपर वक्ता बोलता है या सुनता है तो उस समय एक विशेष उनका प्रभाव व्यक्ति के हृदय में छूटता है। अन्यथा श्रीमद् भागवतम का प्रभाव से लोग प्रभावित नहीं हो सकते हैं। कदाचित सुनने में बहुत सुंदर प्रवचन हो सकता है, वक्ताओं का कमी नहीं है। मायावादी लोग इतना सुंदर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने साहब मना किया कि उन लोग सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। वो इतना सुंदर शास्त्र को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए इसी श्लोक के ऊपर उन लोग की व्याख्या भी है। महाराज मलयध्वज निराकार ब्रह्म में अपने आप को विलीन कर लिया, ये बात भी लिखी हुई है टीकाओं में। देखिए वो लाते हैं, लाने वाले लाते हैं। और श्रीमद् भागवतम उसी प्रकार बोला गया है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप घसीट करके लाते, इसी प्रकार वर्णन किया गया है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद के सामने हजारों नहीं लाखों लोग बैठे हुए थे, और प्रत्येक व्यक्ति एक भिन्न भिन्न अवस्था में थे, अनिश्चित। हमारे जैसे ये लोग नहीं थे, बल्कि दार्शनिक बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, ऋषि मुनि लोग जुटे हुए थे, पूरे ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे। और वे लोग तत्व के बराबर समझने वाले व्यक्ति थे, जो अपने आप में उन भगवत तत्व, भागवत तत्व को जिस रूप में वो लोग समझते हैं, जैसे वदन्ति तत्त्वस्मिद् तत्त्वम् अद्वयम्, एक अद्वैत तत्व जो है उनका विवेचन तीन रूप से होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इन तीन पहलू भगवान का है, लेकिन वही अद्वै एक वस्तु श्री भगवान है, तीन पहलू में उनका साक्षात्कार होता है और तीन प्रकार से साधक लोग हुआ करते हैं, अपनी उनकी साधना भी उन तीन प्रकार से, उन सारी साधनाओं का विवेचन श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी बात इस प्रकार बोले ताकि दूसरे लोग को लगे, सुनने वालों, ये तो हमारे पक्ष का बात कर रहे हैं। और वस्तु तो सर्व पक्षी प्रवचन होना चाहिए, न तो एक पक्षीय, कोई एक विषय में एक पक्षी प्रवचन कभी भागवतम का नहीं है। चाहे हमारे आचार्य हो या अर्वाचीन पूर्व के आचार्य, प्राचीन आचार्य कोई भी हो, तो ये लोग इस प्रकार अपने अनुभव किए हुए मार्ग में वो लोग स्थित होकर के बैठे हुए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद ने इसी प्रकार प्रवचन किया जैसे हम देखते हैं इस श्लोक में। लगता है ऐसे कि पर ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथा आत्मनि, अगर कोई इसको पाठ करे तो परम ब्रह्म में अपने आप को ब्रह्म पर स्वयं को विलीन कर दिया, ये लोग बोल सकते हैं। और मैं पाठ कर रहा था, एक आचार्य ने लिखा है इस प्रकार लिखा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाठ का जो मंतव्य है उनको समझना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाठ अपने प्रवचन में हमेशा सगुण साकार का गुणगान किए हैं, न तो निराकार, कभी निराकार का नहीं किए। और हमारे आचार्य उनकी परंपरा में श्रील प्रभुपाद तक जो भी आचार्य हुए या वर्तमान में जो आचार्य है वो सभी लोग उन सगुण साकार को और भक्ति मार्ग को ही प्रधानता दे करके अपने प्रवचन करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम भक्ति परक ग्रंथ है, भक्ति में भी ये भक्ति परक ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ है, ये समझिए कि इनको माध्यम बना करके जगत के जितने भी भक्त लोग हैं श्रीमद् भागवतम को माध्यम रखते हुए अपना प्रवचन करते हैं और किताबें लिखते हैं। जैसे रूप सनातन गोस्वामी पाठ के द्वारा लिखा हुआ कोई भी किताब का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवतम मध्यस्थ ग्रंथ है। और एक ही उद्देश्य है उनका कि सामान्य जनता तक ये उपदेश जाए और व्यक्ति प्रेमा भक्ति को ग्रहण करे। मुक्ति की ओर देखे ना, लेकिन दुख से त्राण पाना जीवों का स्वभाव देखा जाता है, इसलिए पहले पहल व्यक्ति उन मुक्ति से आकृष्ट होते हैं, ताना मुक्ति अच्छी चीज है क्योंकि संसार दुखमय है। लेकिन प्रोज्जित कैत्वोत्र निर्मस्तानाम सताम, इसमें से सारे प्रोज्जित को, ये सारे जितने भी धोखा है इनको उज्जित सूप में, जैसे व्यक्ति झटक करके जैसे कोई स्त्री उन भूसी को निकाल दे, उसी प्रकार मुक्ति को भी भूसी के सदस्य निकाल दिया है। वेद्यम वास्तव वस्तुअत्र, श्रीमद् भागवतम वास्तविक वस्तु का निरूपण करता है और वास्तविक वस्तु कौन है, श्री भगवान। उनकी दो पहलू जो है वो परमात्मा और ब्रह्म है, ये दो उसी भगवान के पहलू है। इसलिए व्यासपीठ ऊपर बैठने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों का ध्यान रहना चाहिए, सबसे पहले कि हम जो बोल रहे हैं कहीं भागवत तो नहीं कट रहा है ना, कहीं हम श्लोकों तो काटने वाली बात नहीं बोल देते हैं ना, ये बहुत आवश्यक है। जिस समय जिस व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्लोक कट गया, जान अनजाने में विपरीत प्रवचन हो गया, इससे समझ लो न तो उनके ऊपर कृपा उतरेगी भगवान की भागवत की, क्योंकि ये वांगमय स्वरूप है भगवान का, श्रीमद् भागवत भगवान का वाणीमय रूप है, न तो वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा और न तो भागवतम में जिंदगी में भागवतम को समझ सकता है, कभी नहीं, सवाल नहीं उठता है, भागवतम को समझना आसान नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति भागवतम को नहीं समझता है, वो प्रेम को क्या समझेगा, दुनिया भर प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम का मंदिर है, हा भगवान को छोड़कर है, भगवान की पूजा पूजा नहीं है, प्रेम प्रेम मंदिर है, यहां तो देखने को मिलता है सब कुछ, क्या प्रेम को समझेगा। जो व्यक्ति रूप सनातन गोस्वामी पाद की परंपरा में नहीं है, वो प्रेम का काका काका जानना उनके लिए मुश्किल है। यस, उनके प्रेमी भक्त में सबसे बड़े इन ब्रज के आचार्य रूप और सनातन, इसलिए ये जो परंपरा है ना बहुत दुर्लभ है। हम लोग को जो ज्ञान मिल रहा है, हम लोग को जो भागवत मिल रहा है, ऐसा लगता है यार इसकी जगह उधर अच्छा प्रवचन है, उधर प्रवचन है, उधर सुनने जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, पहले विचार करना चाहिए कि ये लोग रूप सनातन को कोट कर रहे हैं, और करते भी है तो क्या उनका आचरण उनके जैसा है, ये बहुत समझदारी पर भावुकता नहीं चलेगा, भावना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जहां तत्व विचार आता है वहां पर भावना चलती नहीं है, भावना बाद में, निश्चित भक्ति भावना का विषय है, लेकिन पहले तत्व को समझ करके सुदृढ़ विचार स्थापित किया जाए, है ना। हमारे पास गुरुवर्ग है, देखिए यहां मलय जज के पास कोई गुरु नहीं है, देखा आपने, लेकिन उनकी निष्ठा देखी गई है। नारद जी के द्वारा यह उदाहरण भले ही रूपक है, लेकिन महापुरुषों के द्वारा भी जो रूपक दिया जाता है वो रूपक इतना मजबूत होता है उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, थोड़ा सा भी ढूंढने पर भी उसमें कमी नहीं निकलेगा, क्योंकि स्वरूप सिद्ध महात्मा लोक के द्वारा लिखा गया चीज है। सारा गलती मायाबद्ध जीव करते हैं, उनके हृदय में अहंता ममता मेरापन उसका यह वह ये चलता रहता है। कभी कभी हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी वो तेरा मेरा गया नहीं, इधर ही तेरा मेरा करते हैं। इवन भागवतम लेके बैठे तो तेरा मेरा का बात चलता है, ये तेरा है ये मेरा है। भागवतम है लोगों की भक्ति बढ़ाने के लिए, लोगों को उन वैराग्य में स्थित करके उनके पास भक्ति ग्रहण कराने के लिए भागवतम है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुराण पुरुषम श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवतम की शिक्षा देकर के क्या सिखाया ना, भक्ति सिखाया, लेकिन कैसा भक्ति, वैराग्य विद्या। वो वैराग्य विद्या है क्या, निज भक्ति योगम, वो भगवान का भक्ति योग है। अगर भक्तियों को छोड़ करके कोई वैराग्य का बात करता है, उन बात की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं। बहुत वैराग्य घुमा करते हैं संसार में, देखा जाता है हिमालय भरा है वैरागियों से, गुजरात में गिरनार भरा है जटा झूठ, कभी न सांसारिक बातें करते हैं, कुछ नहीं है? वैरागी बहुत है। भक्त रह रहे जो वस्तु स्थिति को समझ करके उन भगवान को सर्वोपरि भगवान के रूप भगवान श्री कृष्ण तत्व को समझने वाले, उनके जानकार बहुत कम है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु भगवत गीता गीतोक्ति में बताया गया श्री मुख की वाणी। भावुकता नहीं चाहिए, पहले सुदृढ़ हो जाए निश्चय करके क्या करना चाहिए। जैसे आगे आपने पाठ किया श्री नाद मुनि के द्वारा इस रूपक में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप को साधना में स्थिर किया और स्थित करते हुए साधना में और उनके पश्चात। लेकिन हाँ एक बात, गुरु नहीं थे उनके पास। आप देखिए इस रूपक में इसलिए बोलते साक्षात साक्षात भगवतो उक्तेन गुरुणा, महागुरु श्री भगवान के द्वारा उनको गाइड किया गया। अगर आप औढ़ों में हैं, यार यहां भी अच्छा लगता है उधर भी अच्छा लगता है, सबसे पहले परमात्मा आपके हृदय में है, उनको प्रार्थना कीजिए और ये बोलिए कि जहां ठीक है वहां आप लेके जाइए। आप देखिए कैसे लाइन पर रहेंगे, आप हम लोग कैसे लाइन पर रहेंगे उनको हम देख सकते। खैर इस श्लोक में जाना है, तो ये श्लोक श्रील प्रभुपाद महाराज जी अपने तात्पर्य में वो लिखते हैं कि देखिए भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता है। हमारा स्वार्थ सुनिश्चित शरीर पर टिका हुआ रहता है और वो शिथिल होगा जब व्यक्ति भक्ति में सुदृढ़ हो जाएगा। जितनी मात्रा में वो भक्ति में सुदृढ़ हो पाएगा उतनी मात्रा में देहात्म बुद्धि पिघलती जाएगी। अपना स्वार्थ का जीवात्मा का स्वार्थ निजी देह का है और फिर ममतास्पद वस्तु में उनका स्वार्थ जाता है, अहंता और ममता। लेकिन जीवन स्वरूप कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं और दासों का सेपरेट क्या है, कुछ नहीं। हम तो कह लेते हैं कि हम दासानुदास है, दासों के भी दास है ना। लेकिन जब विचार किया जाए कि वो दासता हमारी है वो कितनी स्वतंत्र है और कितनी हम भगवान में अनुरक्त रख सकते हैं है ना, कितनी हमारी आस्था गुरु में है, देखा जाएगा, निष्ठा को देखा जाएगा। बगैर निष्ठा जो कुछ भी है समझ लीजिए वो भावना है, वो भावुकता है। हाँ मेरी भावना है ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये आपका भाव है, भागवतम का भाव नहीं है। भागवतम का भाव भागवतम के श्लोकों में लिखा गया है कि भाव क्या है भागवतम का, इनको साफ दिखाई पड़ता है। देखिए गुरु नहीं है ऐसे व्यक्ति इस रूपक में है मलय ध्वज जिनके पास गुरु नहीं है, लेकिन उनकी साधना से प्रसन्न होकर के श्री भगवान प्रकटित हुए। श्रील प्रभुपाद महाराज एक एक श्लोक का पर्पट लिखते हैं, कभी कभी कोई आचार्य तीन चार श्लोक को लेकर के एक पर्पट लिखते हैं है ना। किसी भी तरीके से व्यक्ति ये समझ पाए कि वास्तविकता क्या है और भक्ति को किस प्रकार पकड़ा जाए, और भक्ति को किस प्रकार संपन्न किया जाए। अपने हिसाब से भक्ति नहीं चलती है, चलाने वाला व्यक्ति मूर्ख है। हम अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे, हिसाब नहीं चलेगा किसी का। ये तो प्राकृतिक संसार में हमारा हिसाब नहीं चलता है। तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टिप्पणी लिखे इन तीनों श्लोक के ऊपर। पिछले तीन श्लोक है लेकिन दो श्लोक के ऊपर लिखे हैं। वो कहते ततश्च तस्यो उत्पन्न प्रेमणो भगवत साक्षात दर्शनम अपि अभूत इति आह। वो कहते हैं कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो साक्षात दर्शन अभूत, भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करने के बाद सभी वस्तु अपने आप व्यक्ति जान लेता है। जस्मिन विज्ञात सर्वम एव विज्ञातम भवतु। भगवान को जानने से सब वस्तु अपने आप समझ में आ जाए। जैसे सूर्य, सूर्य उदित होते ही अंधकार नष्ट होते ही व्यक्ति अपने आप को देखेगा, जगत को देखेगा। और अंधकार में अपने आप को भी नहीं देख सकते हम लोग, है ना। तो ये माया रूपी अंधकार में और शरीर की अहंता और ममता के भीतर हम लोग है, देख नहीं पाएंगे। जब तक भगवान प्रसन्न हो, जब तक गुरु प्रसन्न न हो, सुनिश्चित गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं, नो डाउट। और जितने भी इस कौन में है ना, कोई एक नया वर्ग नहीं है, वो सब गुरु के फॉलोअर है, सब एक गुरु ग्रहण करके बैठे हुए हैं। और 35-35, 40-40 साल मुकुंद प्रभु बोल रहे थे, आपने सुना ना इसी व्यासपीठ से, मैं इतने साल से वो गुरु का आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं। ये कोई नवीन बात नहीं है कि इस कोण में बैठने वाला व्यक्ति गुरु का आश्रय नहीं है, सब गुरु के आश्रय में। लेकिन कौन किस प्रकार आश्रित है वो बहुत देखना चाहिए। खैर इस विषय में नहीं जाना है। इसमें जो लिखा है कि साक्षात एव भगवता हरिणा संताप हारिणा विश्व तो मुखम स्फुरता और समंता देव प्रस्फुर तेजसा गुरुणा सत्ता उक्त उपदिष्ट जो ज्ञान दीप। कैसे भगवान ने ज्ञान दिया तो कहते हैं हरिणा संताप हारिणा, पिछले श्लोक में एक बताया गया है, कल के श्लोक में भगवान कैसे हैं हरिणा संताप हारिणा। हमारे समस्त संताप को दूरीभूत करने वाले ये भगवान हैं। और गुरुणा, गुरुणा का अर्थ ये है वो इतने महान है वो सब कुछ कर सकते, किसी को भी कभी भी एक सेकंड में अपना साक्षात्कार करा सकते। ये महानतम महानतम शब्द के द्योतक है गुरुणा। और विश्वतोमुखम का अर्थ होता है सर्वव्यापकता, क्योंकि समस्त ब्रह्मांडों में जीव की व्याप्ति है और परमात्मा के रूप में भगवान सबके अंदर और सबके बाहर सब जगह व्याप्त है। अणु और परमाणु में वो परमात्मा व्याप्त है। क्यों उनको विशुद्ध ज्ञान नहीं देंगे? सुनिश्चित उद्धव जी इसलिए एकादश स्कंद में कहे, बहुत सुंदर बात उद्धव जी कहे, नैव उपजन्ति अपि चित्तिम कवयस्तवैषाम ब्रह्म आयुष्याम अपि मुद्द स्मरन्ति यो अंतर बहिर विधुन्वन चेत वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं भगवान कभी भी कोई जीव इस संसार में अगर आपके किए हुए कार्य का उपकार बदला चुकाना चाहे हो नहीं सकता है। चाहे ब्रह्मा जी का आयुष्य व्यक्ति ले, क्योंकि आपका कार्य इतना महान है। कैसा महान है, कहते अंतर बहिर विधुनवन, जीव के अंतर चैत्य गुरु के रूप में और बहिर गुरु के रूप में उनके चित्त को उच्छालित करते हैं, उनको निर्मल बनाते हैं। बहिर गुरु रूपेण और अंतर चैत्य रूपेण परमात्मा के रूप में भीतर वो सतत बैठे हुए और बैठ करके विधुनवन, और इस प्रकार व्यक्ति के हृदय को साफ करके स्वगतिम व्यनक्ति अपने मार्ग को दिखाने वाले वो बैठे हैं। यही तो हुआ पिछले श्लोक का अगर तात्पर्य देखा जाए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यही तो है। स्वगतिम व्यनक्ति अपने मार्ग को स्वयं भगवान ने दिखा ना, केवल इस मलयध्वज को, ये मलयध्वज तो एक रूपक के उदाहरण है, लेकिन आठवां स्कंध में हम लोग पाठ करते हैं महाराज सत्यवत गुरु नहीं है, वो बोलते आप ही हमारे गुरु के गुरु या सबके गुरु आप ही है, आपको ही मैं गुरु मानता हूं। और भगवान मत्स्य के रूप में वो प्रकटित होकर के उन्होंने वो ज्ञान बताया, उन ब्रह्म ज्ञान उन्होंने महाराज सत्यवत को बताया है ना। श्री भगवान कितने महान है उनको हम समझ नहीं पाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, वो समझ में आएगा जब उस सामने साक्षात प्रकटित होकर के दर्शन देंगे, और जब माया तिरोहित होगी तब भी समझ में आएगा कि ओह भगवान क्या है। तभी तो उद्धव जी इस प्रकार श्लोक बोले। तो कहते हैं कि स्व माधुर्य अनुभव प्रकारस्तेन तस्मिन एव परे ब्रह्मणि आत्मानम इच्छा। उन्होंने क्या देखा, ना भगवान ने सबसे पहले अपने माधुर्य का अनुभव कराया, अपनी रूप माधुरी का, अपनी गुण माधुरी का वो अनुभव कराया। दर्शन देते ही अनुभव होता है, जैसे नारद जी को दर्शन देने के बाद नारद जी मृत्यु का वेट करके घूम रहे थे पृथ्वी पर, अभी मरण आए हम लोग सोच सकते है, बस अभी पितला बैठे बोले आज मरण आ जाए अच्छा है, नहीं नारद जी वेट कर रहे मृत्यु का, बस अभी हो गया क्या ना, भगवान ने दर्शन दे दिया अभी बस समय काटना है, जैसे तैसे कटे। सर्वसिद्ध व्यक्ति जीते हैं ना केवल भगवान के लिए, जब इच्छा उनका हो जाए भगवान का इसको लेना है तो हाँ ना करेगा, नहीं नहीं जाना ये बात नहीं करेगा, कहीं का भक्त हो बोलेगा भी नहीं कि नहीं जाना है, या ना हमने थोड़ा शिष्य लोग है और शिष्य लोग का विनती है इसलिए हम रुक जाए, नहीं रुकेंगे। एक बार प्रभुपाद जी जैसे कोई व्यक्ति एक आध बार ठेल देगा मृत्यु को, दो तीन बार ठेल सकता है, वो तो हमेशा ठेल सकता है, लेकिन अपने हरि की प्रीति के लिए उनकी बात उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके साधु लोग चलते हैं, अपनी सेपरेट इच्छा नहीं रखते हैं, जैसे इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। इसीलिए ये जगत और वैकुंठ लोक में वो लोग का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां उनका कुछ लेना देना नहीं है, हमारा अटका हुआ है किसी में, देह में और दैहिक भावना ममतास्पद वस्तु ये में हमारा अटका हुआ है सब कुछ है? उसका क्या अटका है, श्रील प्रभुपाद महाराज का क्या अटका है? है कोई अटका नहीं था, करोड़ों का प्रॉपर्टी था, इसमें से 1,00,000 रुपया अपनी वाइफ को दिया, ठीक है भगवान आपके लिए 1,00,000 है, बाकी ये सारा जो आगे आने वाले भक्त लोग है ना उनके लिए है। और हम तो वेतन के लिए सोच रहे मंदिर क्या देगा, ले। अगर इतना सेवा करेंगे तो सेवा में मंदिर क्या देगा? सेवक कंडीशन रख सकता है? सेवक किसको कहते हैं? बिके हुए पशु की तरह है। अगर बैल कोई कृषक ने खरीद लिया है, उनके बाद में वो जहां उनको बांधेगा वहीं बंदा रहेगा, और जितना काम करेगा उतना करेगा, और जितना खाना देगा उतना ही खाएगा, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि बिका हुआ पहले से दाम चुका लिया है। इस प्रकार भगवान ने पहले से ही ये हम सब लोग को अपना करके माना है। ये सब मेरे दास है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं, और माया के कारण हम सेपरेट अपना अस्तित्व रखते हुए ये सब विचार देते हैं। हमको क्या मिलेगा? अरे आपको जो गिफ्ट मिलेगा, उनका देवता लोग पंचम स्कंद में गाते हैं, क्या बड़ा गिफ्ट देते हैं भगवान। स्वचरणामृत दिया, वो अपना चरणामृत दे करके जीव को कृत कृत करते। जीव ये नहीं जानता है कि मेरा सार्थ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा है, जीव नहीं जानता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पाठ करते वो कहते हैं इसी प्रकार, तस्मिन् परब्रह्मणि आत्मनम इक्षमानम वासुदेव भगवती ना अन्यद वेदो उद्वहन रतिम इति पूर्वोक्त। पिछले श्लोकों में यह बताया गया, जैसे 40वें श्लोक में नहीं, एक मिनट, विश्वतमुखम 40 39वें श्लोक में वासुदेव भगवती ना अन्यद वेदो उद्वहन रतिम। महाराज केवल भगवान वासुदेव में प्रीति प्राप्त करना चाह रहे थे। कैसे वो ब्रह्म में विलीन होंगे? लोग घसीट करके कितना भी कोई तात्पर्य दे, लेकिन आगे पीछे का विचार, श्लोकों का अन्वय देख करके लोग प्रवचन नहीं करते हैं, प्रॉब्लम है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पीछे वाला श्लोक लेकर के इसमें बताया, इस श्लोक में वो हमेशा भगवान की प्रीति के लिए ही इच्छा करते थे कि मैं भगवान का प्रेमी बनूं, भगवान में मेरी प्रीति लगे। अतः कहते हैं रतिम इति पूर्वोक्त भगवती ना स्वर रतिम उद्वहंतम अनुरागिणम पश्यंती इति अर्थ। भगवान में अपनी रति को, अपने अनुराग को बढ़ाना ही उत्तरोत्तर वो चाह रहे थे, और कुछ नहीं चाह रहे थे। जो और कुछ चाहने वाले लोग हैं, उनको भी भगवत चरणारविंद में अगर वो प्रार्थना करता है तो धीरे 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 उनकी चाह, उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, उनका हृदय उससे उपराम हो जाएगा। पंचम स्कंद में देवता लोग इस बात को कहे, और अनेक जगह में ध्रुव महाराज के विषय में उदाहरण हम लोग कई बार बात करते, कई बार उनको सुनते। तो इस प्रकार कहते तथैव ये यथा माम प्रबंधन्ते तान तथैव भजाम्य हम भगवद्गीता उक्ति। भगवद्गीता में बात बताई गई है, जिस भाव से हम भगवान का भजन करके जितनी मात्रा में समर्पण होंगे भगवान उतना ही उनके प्रति। सुनिश्चित उतना ही का अर्थ ये होता है उससे हजार गुना, उससे हजार गुना भगवान बचाते हैं जीव को। उसका अर्थ इस श्लोक में यह है कि परे ब्रह्मणि च आत्मानम, अपने आप को परब्रह्म में विलीन नहीं किया, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे थे। तो कहते हैं उन्होंने देखा, अरे तब भगवान मेरे हैं, भगवान में प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवान उनका अपना हो जाएंगे, ये देखने प्रारंभ किया। परे ब्रह्मणि च आत्मानम, उन परब्रह्म में अपने आप को देखा, अर्थात वो परब्रह्म की सेवा के रूप में, सेवक के रूप में अपने आप को उन्होंने देखा। यही तो आत्म साक्षात्कार है। और इसके लिए बहुत सुंदर बात एक बात बहुत सुंदर बताएं, ये पूरा तो हम टीका नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन कहते हैं जीवात्मा अध्यात्मा दिव्य दिव्य पक्वम अथ च स्वप्ने सुषुप्ता सुषुप्ता अध्यात्म। जब जीव भगवान को समझ लेता है, भगवान को जान लेता है, उनके बाद में स्वप्निक अवस्था, जो जीव की तीन अवस्था होती है, जागृत सुषुप्त स्वप्न, ये तीन अवस्था में हमेशा सदैव हम लोग रहते हैं, या तो जागृत नहीं तो स्वप्न और नहीं तो सुषुप्ति। लेकिन एक अध्यात्म अवस्था है, अध्यात्म अवस्था मैं आत्मा हूं, ब्रह्मवादी लोग जैसे सोचते हैं अध्यात्म, इन तीनों अवस्था से उन आत्मज्ञान से भी वो विरक्त हो गए। स्वप्न सुषुप्ति का छोड़ दीजिए, आत्मज्ञान पर्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ उनके हृदय में, ये अर्थ है। ये तीन बात लिख करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध जीवात्मा अस्तित्व इक्षमाण तथा आत्मनि शुद्ध जीवित चित तमेव परब्रह्म भगवंतम अधिष्ठातारम इक्षमाण। उन्होंने क्या देखा, शुद्ध जीव के रूप में अपने आप को देखा। भगवान का दर्शन करने के बाद सबसे पहले दर्शन किया कि मैं उनका सेवक हूं, इनकी सेवा में क्या करूं। जब रति प्रीति उत्पन्न हुई तो जहां प्रेम है वहां सेवा का भाव अत्यंत उमड़ता है, कैसे मैं इनको संतुष्ट कर लूं। जिसके हृदय में सेवा का भाव है वो सबसे पहले ये सोचते हैं, अपना बात सोचते नहीं, हमारा कुछ भी हो जाए ये नहीं सोचते। और उस खास करके इस जगत में भी हम लोग देखते हैं, लोग दूसरे के लिए मर जाते हैं, मर जाते कि नहीं, है ना। कई लोग ऐसे, वो कहीं कहीं किसके लिए, अनेक लोग मर गए, कोई लोग पैसे के लिए मर गए, अभी हार्ट अटैक हो गया कई लोगों का, वृंदावन में एक का सुना मैंने, 4 करोड़ निकला, डॉक्टर पॉप अटैक कर गया ना? ये लोग अपने लिए कुछ नहीं नहीं सोचते हैं। जो लोग मुक्त जीव है या जो लोग भगवान का साक्षात्कार किए, भगवान के अलावा वो और कुछ नहीं देखते हैं, और जितना उपकरण है चाहे आध्यात्मिक भौतिक, जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो सब केवल उनकी सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने नियुक्त किया। वो हमेशा बोलते थे कि भाई मैं तो एक भिखारी हूं, आप करोड़ों देंगे ना फिर भी इधर चला जाएगा, फिर आपके पास आऊंगा भिक्षा मांगूंगा। वो जानते थे ये बहुत बड़े संघ को स्थापित करना चाहते थे और इनमें करोड़ों रुपया लग सकता है, दिया भगवान ने उनको। उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार मैं भगवान का सेवा करूं, श्रील प्रभुपाद महाराज की इच्छा थी। ऐसी तीव्र इच्छा अगर किसी के भी हृदय में प्रकटित हो जाए, सुनिश्चित वो व्यक्ति भी कर पाएगा। इन सैकड़ों वॉल्यूम्स ग्रंथ उन्होंने लिख दिए, है ना। और ये ग्रंथ लिखते हुए भी, इतने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी, देखिए उनकी जीवनी में हम देखते हैं, इस पर भी उनकी अपनी साधना, अपना जो कुछ है भगवान के लिए वो एकदम उत्कृष्ट अवस्था में उन्होंने किया। ये साधु है, साधक लल्लू पंजू जैसा नहीं हो, बैठे ले जाएंगे तो जाएंगे, यह होगा तो वह होगा, ले जाएंगे ले जाएंगे, हम लोग जाएंगे जाएंगे, मंगल आरती आएंगे कि नहीं आएंगे, जाएंगे कहां जाएंगे पता नहीं, कहां जाएंगे। श्रील प्रभुपाद महाराज तो बोले कि हमारे मूवमेंट में 80% लोग कहां जाएंगे, स्वर्ग में। अब 10-20% में हमारा नंबर है क्या, हम जाएंगे। जाने के लिए मेहनत चाहिए, यस, नरक ले जाने वाली वस्तु पैसा भी फोगट में यहां नहीं मिलता है, भगवान की दासता का कीमत चुकाना पड़ता है। यस है? उनकी कीमत चाहिए, ऐसे मिल जाएगा। देखिए 36,000 साल तपस्या, ये छोड़ दीजिए, एक योग्यतमा व्यक्ति के विषय में पद्म पुराण पतालखंड में लिखा है 9 कल्प तक उन्होंने तपस्या किया गोपाल मंत्र का जप करते हुए, देखिए, और गोपी का शरीर प्राप्त किया वृंदावन में उन्होंने, 9 कल्प, 36,000 साल कौन बड़ा बात है। सुनिश्चित हम इतनी कड़ी तपस्या के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आवश्यक वस्तु है उनको तो संपन्न करना चाहिए भाई, जो जरूरी है वो जरूरी है। ठीक है, जो कुछ भी है। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने परपट में बहुत सुंदर भाव दिए हैं, और जीव गोस्वामी पाद कम संदर्भ में भी उसी प्रकार सुंदर भाव दिए हैं, और इसी को पकड़ करके श्रील प्रभुपाद महाराज इसी बात को सरलता से रखते हुए हमारे सामने इनको बता दिया कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है और भक्ति के साथ जैसे थोड़ा सा भी भगवान का आवास मात्र भी प्राप्त करते हैं, उनके हृदय में आत्मज्ञान पर्यंत वैराग्य उत्पन्न होगा, आत्मज्ञान पर्यंत वो अपने आत्मज्ञान के लिए अपने आत्म साक्षात्कार की ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है और भगवान की गुणावली इतने महान है, कौन देखेगा आत्मा को, उतमें जितना कितना आनंद है उन परम ब्रह्म आनंद की गुणभूत विग्रह भगवान है, और उनका 10,000वां हिस्सा, एक बाल का 10,000वां हिस्सा आत्म साक्षात्कार में मिलने वाला आनंद है, कौन उधर फंसेगा, वैराग्य होगा कि नहीं इसमें। ये तो जो नहीं देखा है वो आत्मज्ञान आत्मज्ञान करके लग जाते हैं, जो नहीं देखा है। जो भगवान का दर्शन किया है वो कैसे लग सकता है। तो इन दोनों दो तीन श्लोकों को पकड़ करके हमारे आचार्य लोग ने इनका व्याख्या दिया है। इस प्रकार कहते हैं विक्षमाणो विहाय इक्षाम अस्मात उपराम, अपने आप से वो उपराम हो गया, किससे, ना शरीर से, अहंता और ममता से अपने आप ऊपर हो गया। और कहते हैं विक्षमाणो विहाय इक्षाम, बगैर परामर्श किसी से अपने आप भगवान में मन लग जाने के बाद व्यक्ति अपने आप जाएगा, थोड़ा सा मन लगने के बाद। अरे इस भौतिक जगत में किसी कोई युवती का किसी युवक में मन लग गया तो सब कुछ छोड़ देगा, है कि नहीं, या युवक सब कुछ छोड़ के उनके पीछे लट्टू हो जाता है, तब भगवान का बात तो दूसरा है ना। तो महाराज का इस प्रकार वो इन शारीरिक चेष्टा से अंतर बाह्य दोनों शरीर से वो विरक्त हो गए, खास करके अंतर शरीर से, जो मन बुद्धि अहंकार का चित्त शरीर है ना, चित्त ये सबसे खतरनाक वस्तु है, ये देह तो छोड़ता है, वैराग्य नहीं होते वो भी जीवात्मा के पास से ले लिया जाता है, लेकिन आंतरिक भाव वाला जो शरीर है ना वो बहुत मुश्किल है उनको छोड़ना। इसलिए कभी कभी लोग भक्ति करते हुए भी वो ममता को घसीट रहे हैं और वो ममता को यहां अप्राकृत रूप में देखते हैं, ये गलती है, इस सबसे बड़ा गलती है। कभी कभार हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सुंदर प्रवचन करके अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं आगे, बढ़ा क्या रहे, घाटे में डाल रहे हैं, मालूम नहीं, क्योंकि भागवतम कट रहा है श्लोकों से, जानते नहीं भागवतम कट जाता है, कैसे आशा कर सकते भगवत प्रेम का और साक्षात्कार का। सुनने में थोड़ा हमारा प्रवचन जरा स्टेट जाता है, लेकिन इसके ऊपर विचार कीजिए आप। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के ऊपर विचार किया जाता है और विचार करके जब इसके ऊपर विचार किया था ना, चित्त में चमत्कार होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम ले लिया, प्रश्न उत्तर नहीं रखेंगे। ये तो लोकनाथ महाराज की कृपा के कारण बाल्दी नहीं अंदर आया है, तो अंदर बाल्दी आ जाता था। खंडराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।